समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ठंड के मौसम में उत्साह की गर्मजोशी भर देने वाले लोहड़ी के पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जनवरी की सर्द रातों में आग की लपटों के चारों ओर घूमकर गर्माहट का एहसास देते और जीवन में तिल गुड़ और मूंगफली सी मिठास भरते इस लोहड़ी के पर्व की खूब शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी गोल्ड पर आज सवेरे के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार वैष्णवी। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, फ्रॉम आवर एंटायर टीम वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग लोहड़ी एंड विद लोहड़ी सेलिब्रेशंस शेड्यूल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इवनिंग वी हैव अदर फेस्टिवल्स एज वेल, बी इट मकर संक्रांति, पोंगल एंड इवन माघ बिहू विच विल बी सेलिब्रेटेड tomorrow. This is a wonderful festival and a very popular annual harvest festival of North India, primarily celebrated in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi and the Jammu region. It is typically celebrated on the night before Makar Sankranti. Well, let's begin our program with the news headlines, shall we?
जी बिल्कुल। देश भर में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये त्योहार देश की समृद्ध कृषि परंपराओं का प्रतीक है, साथ ही ये त्योहार भारत की जीवंत और विविध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है।
India's net direct tax collections have recorded healthy growth in the current financial year up to mid-January. According to the Income Tax Department, the collection grew 8.82% to over 18.38 lakh crore rupees up to 11th of this month. The increase has been driven by steady corporate tax receipts of 8.63 lakh crore rupees and strong contributions from individual taxpayers. Collections from the securities transaction tax also indicate sustained activity in the capital markets. During the same period, tax refunds declined by 17% year-on-year, supporting the rise in net collections. Overall, gross direct tax increased 4.14%, showing positive growth so far this fiscal. For the 2025-26 financial year, the government has projected 12.7% growth in direct tax collections over the previous year. The government has also set a target of 78,000 crore rupees from securities transaction tax in the financial year of 2026.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। ये बात उन्होंने कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि युवा नव प्रवर्तकों और उद्यमियों के प्रयासों से देश रचनात्मक और प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से रचनाकारों का एक नया समुदाय तैयार हुआ है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है।
आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है।
US President Donald Trump has announced that countries maintaining commercial ties with Iran will face economic penalties from Washington. In a social media post yesterday, I beg your pardon, in a social media post today, Mr. Trump said any nation doing business with the Islamic Republic of Iran would be subject to a 25% tariff on all trade conducted with the United States effective immediately. Meanwhile, the White House has said President Trump is keeping all options open in dealing with Iran, and that includes military action, but diplomacy remains his first choice.
और खेलों में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हरा दिया। 144 रनों का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 ओवर और एक गेंद में एक विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाकर पूरा कर लिया। ग्रेस हैरिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
The India Open 2026 tournament will kick off at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi today. Two-time Olympic medalist PV Sindhu will lead India's challenge in the competition. Currently ranked 18th, Sindhu is returning after a difficult 2025 season and a long injury layoff. She recently reached the semi-finals of the Malaysia Open and will be keen to build on that form at home. Malvika Bansod and young Tanvi Sharma will also represent India in women's singles. In women's doubles, Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will lead the Indian challenge, which has a strong home presence. And in men's singles, Lakshya Sen and Ayush Shetty will face each other in the opening round, meaning only one will progress. Former world championship medalists Kidambi Srikant and H.S. Pranoy will also be in the draw.
श्रोताओं, अब रुक करते हैं प्रमुख महानगरों की ओर और जानते हैं वहां की हलचल, साथ ही वो मुख्य खबरें जिनका आपसे है सरोकार। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आज नई दिल्ली में भाषिणी समुदाय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसका विषय है भारत की भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना। मंत्रालय ने बताया कि ये भारत के लिए भाषा आधारित एआई समाधानों के सह निर्माण, शासन और विस्तार के उद्देश्य से भाषा विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों को एक साथ मंच पर लाती है।
And moving towards Chennai, the Greater Chennai Corporation has announced that tree felling in public areas without permission from the authorities will attract a fine of 1 lakh rupees. Started from 12th of this month, anyone cutting, removing or pruning trees must seek the corporation's permission through the GCC website or the Nama Chennai app. The corporation also warned of fines of up to 15,000 rupees for chopping branches without approval or harming trees by driving nails into them, fixing advertisement boards or even wrapping decorative lights around tree trunks. GCC park officials, forest department personnel and social activists will inspect the spot before applications are placed before the Green Committee for approval.
और बढ़ते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 15 जनवरी को बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 29 नगर निगमों में मतदान को आसान बनाने के लिए 15 जनवरी को होने वाले मतदान के दिन अवकाश घोषित किया है। वहीं ठाणे नगर निगम चुनावों के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें झुग्गी मुक्त शहर और व्यापक अवसंरचना विकास को वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बेहतर जल आपूर्ति, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और उन्नत खेल सुविधाओं का भी वादा किया गया है।
And about Hyderabad, the Telangana State Police began a statewide 10-day road safety awareness campaign, Arrive Alive, last evening in Hyderabad. Formally launching the campaign, State Chief Minister A. Revanth Reddy proposed introducing an auto debit system for traffic chalans to ensure prompt collection of fines, with penalty amounts being directly debited from the bank accounts of motorists at the time of issuing chalans for traffic violations. He said leniency in concessions in traffic fines had diluted the fear of punishment among violators and proved counterproductive. He said strict and uncompromising action alone can effectively control road accidents. Pointing out that a road accident occurs every minute in the country, he stressed that road safety awareness must be inculcated at the student stage itself.
Aur ab Hyderabad se ruk karte hain Kolkata ki aur. मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को तेज करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती कर रहा है। आयोग सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्त करने पर भी विचार कर रहा है। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की मदद के लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को भेजा है, जिससे कि इसके नियंत्रण को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।
And from Kolkata, we are moving towards Bengaluru. Lal Bagh Botanical Garden, spread over 200 acres, will organize the annual Republic Day flower show from tomorrow to 26th of this month. This will be its 219th flower exhibition as part of the Republic Day. This year, the theme is a flower tribute to the late Kannada literateur and environmentalist K.P. Purnachandra Tejasvi. Titled as Tejasvi Vismaya, the flower show will showcase Tejasvi's love for nature and his literary contributions. The back of the central part of the glass house will have a scene from Tejasvi's best novel, Carvalho. This is created using over 5 lakh flowers and 2.4 lakh plants. The main flower creation inside the iconic glass house is a floral fountain. Is a floral mountain, a waterfall, and a replica of the author's house, Nirutara. The characters from Tejasvi's literature, the flying fox and elephant replicas, adorn the entrance of the glass house. Another highlight of the show will be a 12-foot vertical garden titled Mantra Mangale and a thread art portrait of the prominent writer.
और तन्वी, अब श्रोताओं को महानगरों की मौसम का हाल भी दे देते हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज दिनभर शीतलहर चलने का अनुमान है। शहर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता की बात करें तो सुबह हल्की धुंध रहेगी और दिन में मौसम साफ रहेगा। बात करें तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
And if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 28 degrees. And if we talk about Hyderabad, it's expected to have a partly cloudy sky just like Chennai but with haze. The minimum temperature was 18 degrees and maximum will be around 27 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature was 18 degrees. Degrees and maximum will be around 25 degrees. And moving towards our next section where we talk about this particular day, that is 13th of January, and what all happened on this particular day in the history. So let's begin with 1910. The first live radio broadcast of a complete opera was transmitted from the Metropolitan Opera House in New York City.
तन्वी, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी, 1607 की बात करूंगी। 1607 में आज के दिन स्पेन में राष्ट्रीय दिवालियापन घोषित होने के बाद बैंक ऑफ जेनेवा का पतन हो गया। इस घटना ने यूरोप की बैंकिंग व्यवस्था को झकझोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय तक अनिश्चितता पैदा की। 1818 में उदयपुर के राणा ने मेवाड़ के संरक्षण के लिए अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद मेवाड़ ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में आ गया और मेवाड़ की राजनीतिक दिशा बदल गई। वहीं 1849 में आज ही के दिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियांवाला की ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई और 1889 में असम के युवाओं ने अपनी साहित्यिक पत्रिका जोनाकी का प्रकाशन शुरू किया।
In the year 1942, American industrialist Henry Ford patented plastic automobile construction, and in the same year, Luftwaffe test pilot Helmut Schenck became the first person to successfully use an airplane ejector seat after his jet fighter's control panel iced up. And in the year 1948, Mahatma Gandhi went on to fast unto death in Kolkata for communal harmony.
और 1910 में न्यूयॉर्क शहर से दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। ये वही पल था जब आवाज पहली बार तारों से निकलकर सीधे लोगों के घरों तक पहुंची। और 2007 में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 37वां अधिवेशन न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जहां दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों ने लैंगिक समानता पर गंभीर मंथन किया।
If we talk about 1999, National Basketball Association, that is NBA superstar Michael Jordan of the Chicago Bulls announced his retirement from professional basketball for the second time.
और बात करें 2010 की, तो 2010 के वैश्विक वित्तीय संकट का असर जर्मनी पर भी पड़ा और वर्ष 2009 में उसकी अर्थव्यवस्था लगभग 5% तक गिर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा आर्थिक गिरावट थी। 2020 में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज का मसौदा जारी किया, जिसके तहत दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया।
एंड इन द ईयर 2021 डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड टॉइस। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु हैव टेकन बर्थ ऑन दिस पर्टिकुलर डे और हु हैव लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबोड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो द फर्स्ट पर्सन इन द लिस्ट इज
प्रभात्रे। कुछ आवाजें समय के साथ नहीं मिटती, वे संगीत बनकर हमेशा गूंजती रहती हैं। किराना घराने से जुड़ी प्रभा अत्रे ने ख्याल गायकी को नई ऊंचाइयां दी। उनकी आवाज में तकनीक के साथ भावनाओं की गहराई भी थी। उन्होंने देश विदेश में भारतीय संगीत का मान बढ़ाया और कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। पद्मभूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अमिट पहचान बन गई। तो आइए सुरों की इस महान साधिका को नमन करते हुए प्रभा अत्रे की आवाज में उनकी एक यादगार प्रस्तुति सुनते हैं।
And today is the death anniversary of Madan Puri, an Indian actor of Hindi and even Punjabi films. His brothers were actors Chaman Puri and Amrish Puri. As a character actor, mainly in negative roles, that is villain, he acted in about 430 films from 1940s through mid-1980s in a career spanning above 50 years. His film debut was titled Ahimsa in 1946 and he made an average of around 8 films per year playing villains and negative characters and the heroes or the heroines, uncles, father, elder brother, grandfather, police officer and politician. A few of his films are Aradhana, Pyar Ka Mausam, Shagird, Hamraz, Love in Tokyo, Kashmir Ki Kali, Phool Aur Patthar, Ittefaq, Ali Baba Aur Chalis Chor and the list is really long. So let's just hear a dialogue from one of his films.
Lala, Makhan to dekhte ya. Pehle doodh, फिर दही,
फिर मक्खन।
बेकार दुकान मत चला, ये उधार चंद का होटल है, दुर्गा देवी का घर नहीं, जहाँ तुम बातों का मक्खन लगाकर किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो।
क्यों नाराज होते? अब मैं क्या बताऊं, एक जान और 100 जंजाल। कल तक तो मेरे जिम्मे सिर्फ एक ही काम था, दुर्गा देवी की बेटी के लिए लड़का ढूंढना, और अब एक काम मेरे सिर पर और लाद दिया। कहने लगी नौकर ढूंढ कर लाओ। अब मैं नौकर कहां से ढूंढ कर लाऊं? कोई नौकर वहां काम करने के लिए तैयार हो तब ना।
आज हम याद कर रहे हैं उड़िया सिनेमा के प्रतिष्ठित फिल्मकार मनमोहन महापात्र को। आज मनमोहन महापात्र की पुण्यतिथि है। वे समानांतर सिनेमा के उन निर्देशकों में से थे जिन्होंने सादगी और यथार्थ को पर्दे पर जगह दी। उनकी फिल्मों में समाज की सच्चाइयां और आम लोगों की भावनाएं दिखाई देती थी। उन्होंने उड़िया सिनेमा को केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि विचार का माध्यम बनाया। कभी कभी देश की सेवा सबसे बड़े साहस का परीक्षा बन जाती है और सरस्वती राजामणि ने इसे सिर्फ 16 साल की उम्र में पार कर दिखाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भारत आजाद हिंद फौज की लड़ाई में जुटा था, सरस्वती ने गुप्त सूचनाएं जुटाने और उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचाने का काम संभाला। इतनी कम उम्र में खतरों की आंखों में आंखें डालकर देश की सेवा करना आसान नहीं था। उनकी ये वीरता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। ये कहानी साहस, निडरता और देशभक्ति की अनसुनी परंतु गौरवशाली मिसाल है।
And today is the death anniversary of Edmund Spenser, an English poet best known for The Fairy Queen, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Queen Elizabeth I. He is recognized as one of the premier craftsmen of nascent modern English verse, and he is considered one of the great poets in the English language. In 1579, he published the Shepherdess Calendar. In 1590, Spenser brought out the first three books of his most famous work, that is, The Fairy Queen, having traveled to London to publish and promote the work with the likely assistance of Rowley. He was successful enough to obtain a life pension of 50 euros a year from the queen herself.
जब तबले की थाप बोलती है तो हर ताल की दुनिया सजीव हो उठती है, और वही जादू था अहमद जान थिरकवा में। आज ही के दिन 1976 में तबला वादन के महान उस्ताद अहमद जान थिरकवा ने हम सबको अलविदा कहा। बनारस घराने से जुड़े थिरकवा साहब के वादन में सिर्फ धुन ही नहीं बल्कि कहानी, भाव और ऊर्जा झलकती थी। उन्होंने भारतीय ताल परंपरा को न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई। उनके छात्र आज भी उनके अंदाज और तकनीक को दुनिया भर में जीवित रखे हुए हैं।
And today is also the death anniversary of another poet. He is James Joyce, an Irish novelist, poet and literary critic. He contributed to the modernist movement and is regarded among the most influential and important writers of the 20th century. His novel Ulysses, that came out in 1922, is a landmark in which the episodes of Homer's Odyssey are paralleled in a variety of literary styles, particularly stream of consciousness. And other well-known works are his short story collection Dubliners, that came in 1914, and the novels A Portrait of an Artist as a Young Man in 1916.
आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची की। उनकी शायरी में इंसानी दर्द, सामाजिक सच और गहरी संवेदना झलकती थी। वे सरल शब्दों में बड़ी बातें कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें आज भी साहित्य प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं।
And today is the birthday of Shonda Rhimes, an American television producer and screenwriter, and also the founder of the production company Shondaland. Inducted into the Television Hall of Fame and NAB Broadcasting Hall of Fame, she became known as the first showrunner, creator, head writer, and executive producer of the medical drama Grey's Anatomy and another series that was Private Practice and also Scandal, becoming the first woman to create three television dramas that have achieved the 100-episode milestone. And let's just play a music and maybe you can judge which particular series is it and have you watched it or not. Exactly. This is from Bridgerton. So, Vaishnavi, did you guess what exactly this theme music was?
जी बिल्कुल, Bridgerton की ही सीरीज का है और मैंने देखा है ये काफी, मतलब काफी लोकप्रिय भी है रहा है इसे।
Yes, the Netflix period series Bridgerton from 2020 till present, and also the continuation one is Queen Charlotte, a Bridgerton story that came out in 2023. Yes, we were talking about nobody else but Shonda Rhimes.
आज जन्मदिन है भारत के एक ऐसे वीर सपूत का जिनका नाम साहस का पर्याय बन चुका है। 1978 में जन्मे मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस के सबसे साहसी अधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ माना जाता था। जम्मू कश्मीर में सेवा के दौरान उन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशनों का नेतृत्व किया। एक मुठभेड़ में उन्होंने अपने साथियों को बचाते हुए आतंकियों का सामना किया और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। वे आज भी भारतीय युवाओं के लिए साहस और देशभक्ति की मिसाल है।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
And today is the birthday of a person who has sung multiple songs, and this one is one of them. So before I tell you who this person is, let's just listen to this particular song.
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
I'm sure all of you must have guessed, he is Piyush Mishra, an Indian actor, singer, lyricist, playwright, musician and screenwriter. He graduated from the National School of Drama, Delhi in 1986, and thereafter he started his career in Hindi theatre in Delhi. Over the next decade, he established himself as a theatre director, actor, lyricist and singer. You must have seen him in either Makbool or Gangs of Wasipur, Black Friday and even in Gulab. So let's just listen to another single stanza of one of his tracks and appreciate his writings once again.
कुछ लोग आसमान को देखते हैं और कुछ लोग आसमान को छू लेते हैं। आज जन्मदिन है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का। 13 जनवरी 1949 को जन्मे राकेश शर्मा एक साधारण परिवार से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में उन्होंने वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा की, लेकिन उनकी असली उड़ान शुरू हुई 1984 में, जब वे सोवियत संघ के सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। करीब 8 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए उन्होंने भारत, हिमालय और गंगा को अंतरिक्ष से देखा और इतिहास में पहली बार कोई भारतीय धरती को आसमान से निहार रहा था। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा वहां से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जो उत्तर दिया वे हमेशा के लिए अमर हो गया।
ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा।
ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पूरे देश को गर्व करने वाला क्षण था। अंतरिक्ष से लौटने के बाद भी राकेश शर्मा ने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। आज भी वे युवाओं को यही संदेश देते हैं कि सपनों की कोई ऊंचाई नहीं होती, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान सितारों तक पहुंच सकता है।
And today is the birthday of Orlando Bloom, an Indian actor. Either you have seen him in the Lord of Rings film series, The Hobbit, the Pirates of Caribbean film series, Kingdom of Heaven, The Three Musketeers, New York, I Love You, and even The Outpost or The Carnival Row. Let's just hear a dialogue, a portion of his interview actually, where he's sharing the moment he realized that he is now famous.
The first time that happened to me where I was recognized by somebody, it was before Lord of the Rings had come out, and I was like 23 or 22 or something, but I was walking through a supermarket buying pasta and this woman came up behind me and it had only just released and she whispered into my ear, "Are you my elf?"
कुछ लोग फिल्में बनाते हैं और कुछ लोग जिंदगियां में कहानियां घोल देते हैं। 13 जनवरी 1926 को जन्मे शक्ति सामंत हिंदी सिनेमा के उन जादूगरों में से थे जिनकी फिल्मों ने पूरे एक दौर की भावना को आकार दिया। जब पूरे देश मेरे सपनों की रानी गुनगुनाता था, उसके पीछे शक्ति सामंत की कल्पना और संगीत की समझ थी।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी।
और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे एंड हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन। नमस्कार।